ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 15 सितंबर 2019 के लिए है। विषय पदार्थ स्वर्णपथ भजन सैनता। क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उत्तरदायी अध्ययन इतिहास। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कामों का धन्य करो, उसके पवित्र नाम पर घुमंड करो, भगवान के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए गए आश्चर्य काम, उसके चमत्कार और न्याय स्मरण करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कामों का वर्णन करो। पाठ उपदेश बाइबल में से व्यवस्था विवरण। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश पूरी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मीह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बथेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। रोमियो। आह, परमेश्वर का ध्यान और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे आगाम हैं, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। भजन सैनता। परमेश्वर के रथ 20,000, वरुण हजारों हजार हैं। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। निर्गमन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गदोली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ऐसा हुआ कि सांझ को बुटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के तिनकों के सामान पड़े हैं। ये देखकर इसराइली, जो ये नहीं जानते थे कि ये क्या वास्तु है, आपस में कहने लगे कि ये तो मना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये तो वही भोजन वास्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने को देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी वो ये है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के युगे बटोरा करना, अर्थात अपने अपने परिणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों वो उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। और इसराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। और जब उन्होंने उसको ओमर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घाटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के युगे ही बटोर लिया था। निर्गमन। फिर इसराइलियों की सारी मंडली नसीन नामी जंगल से निकल गई, और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रफेदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वो मूसा से वादा विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे वादा विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पीने की प्यास लगी, तब वो यही कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों, पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पथरावा करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी से मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मैसा और मरीबा रखा, क्योंकि इसराइलियों ने वहाँ वादा विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। यशाया। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तिरपित और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सौते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं और ना खित्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मोल नहीं रखते? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो पारिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी विभाव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। यूहन्ना। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतात के कारण उसे खींच ना सके। नीति वचन। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा ही है। धन और पारितिष्ठा मेरे पास है, वरुण ठहराने वाला धन और धाम भी है। मेरे फल चोखे सोने से वरुण कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धाम की बात में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूं। फिलिप्पियों। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा साहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घाटी को पूरा करेगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर अनंत है, एकमात्र जीवन पदार्थ आत्मा या जान, ब्रह्मांड की एकमात्र बुद्धि जिसमें मनुष्य भी शामिल है। सवाल, पदार्थ क्या है? उत्तर, पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और कषाय से असमर्थ है। सत्य प्रेम और जीवन पदार्थ हैं, क्योंकि इब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है। विश्वास आशा की हुई वास्तुओं का निश्चय और अनदेखी वास्तुओं का प्रमाण है। आत्मा मन जान या ईश्वर का प्रायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। व्यक्ति साहित आध्यात्मिक ब्रह्मांड एक यौगिक विचार है, वो आत्मा के दिव्य पदार्थ को दर्शाता है। क्रिश्चियन साइंस में पदार्थ को आत्मा के रूप में समझा जाता है, जबकि क्रिश्चियन साइंस के विरोधियों का मानना है कि सामग्री भावतिक है, वो किसी चीज़ के बारे में और लगभग एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं और वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आत्मा से संबंधित हैं और कुछ भी नहीं, या ये दैनिक अनुभव से बहुत दूर हैं। क्रिश्चियन साइंस इससे विपरीत दृश्य रखती है। आत्मा एकमात्र पदार्थ है, अदृश्य और अविभाज्य अनंत भगवान, आध्यात्मिक और शाश्वत चीज़ें पर्याप्त हैं, चीज़ें सामग्री और अस्थाई असद्य हैं। उत्पत्ति 1:11। फिर भगवान ने कहा, पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं की एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हुआ। आत्मा का ब्रह्मांड ईश्वरी सिद्धांत या जीवन की रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जो मन की बहुआयामी रूपों को पुन उत्पन्न करता है और यौगिक विचार मनुष्य के कुनन को नियंत्रित करता है। पेड़ और जड़ी बूटी किसी भी तरह की अपने स्वयं की प्रचार शक्ति के कारण फल नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि वो मन को प्रतिबिंब करते हैं जिसमें सभी शामिल हैं। एक भावतिक दुनिया एक नश्वर मन और मनुष्य को एक निर्माता बनाती है। वैज्ञानिक ईश्वरी रचना अमर मन और ईश्वर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड की घोषणा करती है। अनंत मन मनासिक अणु से अनंत तक सभी को बनाता और नियंत्रित करता है। सभी का ये दिव्य सिद्धांत उनकी रचना के दौरान विज्ञान और कला और मनुष्य और ब्रह्मांड की अमरता को व्यक्त करता है। सृजन हमेशा दिखाई दे रहा है और हमेशा अपने अटूट स्वरूप की प्राकृति से प्रकट होता रहना चाहिए। नश्वर भाव इस प्रकार प्रकट होता है और विचार सामग्री कहलाता है। इस प्रकार गलत अर्थ में दिव्य विचार मानव या भावतिक विश्वास के स्तर तक गिर जाता है, जिसे नश्वर मनुष्य कहा जाता है। लेकिन बीज अपने आप में है, केवल दिव्य मन ही सब कुछ है और सभी को पुनः उत्पन्न करता है, जैसे कि मन गुण है और मन का अनंत विचार मनुष्य और ब्रह्मांड उत्पाद है। एक विचार, एक बीज या एक फूल की एकमात्र बुद्धि या पदार्थ ईश्वर है जो इसका निर्माता है। मन सभी की आत्मा है, मन ही जीवन सत्य और प्रेम है जो सभी को नियंत्रित करता है। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन है और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। मनुष्य के साथ भगवान के वैज्ञानिक संबंध हैं। हम पाते हैं कि जो कुछ भी एक को आशीर्वाद देता है वो सभी को आशीर्वाद देता है, जैसा कि यीशु ने आत्मा को दिखाया, भावतिक नहीं आपूर्ति का स्रोत होने के नाते रोटियों और मछलियों के साथ। आत्मा प्रतीक वास्तव को विधिवाद खिलाती है और कपड़े देती है, जैसा कि आध्यात्मिक निर्माण की पंक्ति में दिखाई देता है। इस प्रकार भगवान के पितातिव और मातृतिव को कोमलता से व्यक्त करके, क्या हम खुले फवारे में और अधिक की याचना करेंगे, जिसे हम स्वीकार करने की तुलना में अधिक डाल रहे हैं? अनैच्छुक इच्छा हमें सभी अस्तित्व और आशीर्वाद को स्रोत के करीब लाती है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत, परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। अपने निर्माता से विशेष अधिकार पर नहीं मानते हुए, परंतु सभी के पिता और माता को पहचान कर, जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। मसीह सत्य मनुष्यों को स्थायी भोजन और कपड़े देता है, जब तक कि सामग्री गायब नहीं हो जाती जो आदर्श के साथ बदल जाती है, और जब तक आदमी को कपड़े नहीं पहनाए जाते और आध्यात्मिक रूप से नहीं खिलाया जाता। सेंट पॉलूस कहते हैं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यीशु ने कहा, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ये सच्चाई क्रिश्चियन साइंस है। क्योंकि सत्य अनंत है, त्रुटि को कुछ भी नहीं के रूप में जानना चाहिए, क्योंकि सत्य अच्छाई में सर्वशक्तिमान है त्रुटि सत्य के विपरीत कोई शक्ति नहीं है। अपने छात्रों को सत्य की सर्वशक्ति मान्यता सिखाएं, जो त्रुटि की नापुंसकता को दर्शाता है। एक अंश में भी परमात्मा की समझ से सारी शक्ति भय को नष्ट कर देती है और ये सच्चे मार्ग में पैर रखती है, वो मार्ग जो बिना हाथों के बने घर की ओर जाता है, आकाश में अनंत। दिव्य प्रेम मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। प्रेम मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। प्रेम मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। प्रेम मेरे जी में जी ले आता है। धाम के मार्गों में प्रेम अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रेम मेरे साथ रहता है। प्रेम के सौंते और प्रेम की लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। प्रेम ने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं प्रेम के धाम चेतना में वास करूंगा। ईश्वरी प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समय में सभी अच्छी की आपूर्ति करता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।